नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार जोरों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की व्लादिवोस्तक में पहली शिखर वार्ता आज। दोहा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अंतिम दिन एक स्वर्ण सहित चार पदक जीते, भारत चौथे स्थान पर। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किंग्स इलेवन पंजाब को 17 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार जोरों पर है। 9 राज्यों की 71 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में दरभंगा और उत्तर प्रदेश के बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री वाराणसी में रोड शो करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये रोड शो दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा।
रोड शो की शुरुआत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध लंका गेट से होगी, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ये 7 किलोमीटर लंबा रोड शो शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए शाम को दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में वाराणसी से ही सांसद हैं और चुनाव मैदान में हैं। वहीं गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव उन्हें टक्कर दे रही हैं। कांग्रेस ने अभी तक यहां अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और उन्नाव में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जालौन में चुनाव प्रचार करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती राज्य में शाहजहांपुर और कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगी। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई वासियों को अधिक से अधिक मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक योजना बनाई है।
मुंबईकरों को और खासकर महिलाओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मुंबई के सभी मतदान क्षेत्रों में सखी मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। वहीं मतदाताओं के लिए इन मतदान केंद्रों पर कोल्ड ड्रिंक्स की भी व्यवस्था की जाएगी। सद्भावना के तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए आने वाली सभी महिला मतदाताओं को सैनिटरी नैपकिन्स देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, पश्चिम बंगाल में 8, ओडिशा में 6, बिहार में 5 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा। पेश है हमारी संवाददाता की छिंदवाड़ा लोकसभा की ये रिपोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अजमेर, जालोर तथा कोटा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे तथा आनंद कुमार सहित अन्य स्टार प्रचारक भी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के शीर्ष नेता तथा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का कल जालोर में जनसभा तथा जोधपुर में रोड शो करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, अविनाश राय खन्ना तथा सुधांशु त्रिवेदी सहित कई अन्य नेता भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
इस चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत कुलगाम जिले के सभी मतदान केंद्रों पर भी वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 71 सीटों के अलावा 147 सीटों वाली ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी मतदान होगा। इस बीच ओडिशा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 9 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। नागालैंड के ओखा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र में 1 और उत्तर प्रदेश में आगरा लोकसभा सीट के अंतर्गत 1 मतदान केंद्र पर भी पुनर्मतदान कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों में तकनीकी खराबी और ईवीएम को नुकसान पहुंचाए जाने सहित कई कारणों से पुनर्मतदान कराया जा रहा है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा इलाके में आज सुबह मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इस इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर सुरक्षा बलों ने देर रात कार्रवाई शुरू की। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया,
पुलिस ने एक खास इत्तला के ऊपर बिजबेहड़ा टाउन अनंतनाग जिला में ऑपरेशन रात को लॉन्च किया था। इसमें सुबह सुबह दो मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। उनकी आइडेंटिटी क्या है वो भी पता कर रहे हैं, मगर उनसे बड़ी भारी मकदार में जो असला अमुनिशन जो है पकड़ा गया है। ये उस इलाके में काफी देर से एक्टिव मिलिटेंट थे।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कल रात उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 5 लोगों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दल के साथ संयुक्त कार्रवाई में NIA ने सैदपुर इम्मा गांव के कई घरों पर छापे मारे। पिछले साल दिसंबर में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी गुट का पता लगाने के बाद NIA ने 5वीं बार छापे मारे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तक में पहली शिखर वार्ता होगी। रूस के राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने बताया कि दोनों नेता कोरिया प्रायद्वीप की परमाणु समस्या पर चर्चा करेंगे। अपने देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस साल के शुरू में हनोई में हुई मुलाकात के बेनतीजा रहने के बाद किम जोंग उन रूस की मदद लेना चाहते हैं। श्रीलंका में रविवार के आतंकी हमले के बाद की स्थिति और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इन हमलों में 359 लोग मारे गए और अनेक घायल हुए हैं। राष्ट्रपति ने सर्वधर्म सलाहकार समिति की भी बैठक बुलाई है। इससे पहले देश के पुलिस प्रमुख और रक्षा सचिव को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
श्रीलंका में सुरक्षा स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है और रविवार हमलों में लिप्त संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और 6,000 से ज्यादा सेना के जवान तैनात किए गए हैं। हमलों की छानबीन जारी है और स्थानीय संगठनों के तार विदेशों से जुड़े होने को लेकर विदेशी एजेंसियां हर संभव मदद कर रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कुल 9 आत्मघाती हमलावर हमलों में लिप्त थे, जिनमें 8 की पहचान कर ली गई है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि उनमें से ज्यादातर अच्छे परिवारों से थे और एक ने अपनी कॉलेज शिक्षा ब्रिटेन में ली थी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
अमेरिका ने म्यांमार से फिर अपील की है कि रोहिंग्या संकट की खबरों को लेकर गिरफ्तार किए गए राइटर्स के 2 पत्रकारों को रिहा कर दें। पहली अपील को नकार दिए जाने पर अमेरिका ने निराशा व्यक्त की है। राइटर्स के 2 पत्रकार वालोन तथा काओ सोई वू को गुप्त दस्तावेज रखने के मामले में दिसंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था और 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पूर्वी यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा के लिए आज दोपहर आपात बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र के मीडिया कार्यालय ने इस बैठक को संगठन की आज की कार्यसूची में शामिल किया है। रूस की इस घोषणा के बाद कि वो यूक्रेन के डोनबास के कुछ निवासियों को रूसी पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सुगम बनाएगा, यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। भारत ने कतर की राजधानी दोहा में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल अंतिम दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक हासिल किए। पीयू चित्रा ने महिलाओं का 1500 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण 7 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। बहरीन शीर्ष पर जबकि चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात बेंगलुरु में किंग्स 11 पंजाब को 17 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 185 रन ही बना सका। मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स संघ तालिका में सबसे ऊपर है। दिल्ली कैपिटल्स दूसरे और मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर है। आज रात 8 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता में होगा। बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 13 भारतीय मुक्केबाज आज सेमीफाइनल मुकाबलों में उतरेंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही इन 7 पुरुष और 6 महिला भारतीय मुक्केबाजों के लिए कांस्य पदक निश्चित हो गया है। इस साल भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन ने भारत को कजाकिस्तान और चीन से भी आगे ला दिया है। पहली बार टूर्नामेंट में पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले साथ साथ हो रहे हैं। चीन के वुहान में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल सहित सात भारतीय खिलाड़ी आज अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की कोरियन नेसा से होगा। साइना नेहवाल का सामना दक्षिण कोरिया के किम गा उनसे होगा। पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा और हांगकांग के अंगस का लोंग आमने सामने होंगे। मिक्स डबल्स में वेंकट प्रसाद और जूही देवांगन तथा करिश्मा वाडकर और उत्कर्ष अरोड़ा की जोड़ियां भी अपने अपने मैच खेलेंगे। अमेरिका में वर्ष 2019 में खसरे के 695 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2000 में खसरे के उन्मूलन की घोषणा के बाद किसी एक साल में खसरे के मामलों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद विमलिंदु। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कथित साजिश पर उच्चतम न्यायालय के कड़ा रुख अपनाने को अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस के प्रमुख तलब। दैनिक जागरण की सुर्खी है फिक्सिंग रैकेट के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय सन्न, कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचाने के लिए मामले की तह तक जाएंगे। अधिवक्ता उत्सव बैंस का आरोप, प्रधान न्यायाधीश को फंसाने में फिक्सर कॉरपोरेट लॉबी का हाथ। राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है हार के बहाने तलाशने पर जुटा समूचा विपक्ष। चुनावी माहौल में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपहार की चर्चा अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है सियासी जंग के बीच मोदी के इंटरव्यू में दीदी के लिए ममता। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रत्याशियों का लेखा जोखा शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सबसे कम 71 सीटें लेकिन दागी और करोड़पति औसतन सबसे ज्यादा। राजस्थान पत्रिका ने सोशल मीडिया पर मैसेज फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति पर सचेत किया है मन की हैकिंग से बचें। संगठित बाजार का रूप ले चुका है फॉरवर्ड मैसेज, पूर्वाग्रहों के सहारे दिलो दिमाग में जगह बनाती है फेक न्यूज। अंग्रेजी दैनिक हिंदू की बड़ी खबर है बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको ने गुजरात में किसानों से उसके आलू के चिप्स की किस्म के आलू उगाने पर लगभग 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी। किसानों का आंदोलन, अहमदाबाद की अदालत में मामले की सुनवाई कल। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए आतंकी हमलों के बारे में पुलिस के खुलासे पर नवभारत टाइम्स का कहना है विस्फोट में एक महिला समेत 9 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। अमर उजाला की टिप्पणी है पढ़े लिखे और रईस परिवारों से थे हमलावर, कट्टरपंथी उपदेशकों पर अगर कार्रवाई होती तो नहीं होते धमाके। राजस्थान पत्रिका ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हवाले से लिखा है जलवायु परिवर्तन में 31% धीमी भारतीय अर्थव्यवस्था।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार जोरों पर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की व्लादिवोस्तोक में पहली शिखर वार्ता आज होगी। दोहा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अंतिम दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीत लिए हैं। भारत चौथे स्थान पर है। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किंग्स इलेवन पंजाब को 17 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।